दलित साहित्य और मार्क्सवाद। विश्व में मार्क्सवाद की एक वाद, एक राजनीतिक चिंतन, एक दर्शन के रूप में चर्चा 1848 में कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा तैयार कम्युनिस्ट घोषणा पत्र से हुई, जिसकी 150वीं जयंती 1998 में मनाई गई। लेकिन यहाँ मार्क्सवाद का तात्पर्य एक दर्शन या राजनीतिक चिंतन के रूप में नहीं, वरन साहित्य के क्षेत्र में मार्क्सवाद के प्रभाव को आंकने व दलित साहित्य और साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय मार्क्सवादी चिंतनधारा के परस्पर संबंधों को देखना है। वास्तव में साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में मार्क्सवाद शब्द की बजाय प्रगतिवाद, यथार्थवाद या समाजवादी यथार्थवाद आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अधिक सटीक व तर्कसंगत है, क्योंकि साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में मार्क्सवादी चिंतन की अभिव्यक्ति इन्हीं पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत हुई है। यह ऐसे ही है जैसे कुछ लोग दलित साहित्य शब्द की बजाय अम्बेडकरवादी साहित्य या बौद्ध साहित्य शब्द का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन ये पारिभाषिक शब्द प्रस्तुत नहीं हो पाए और उचित रूप से दलित साहित्य ही पारिभाषिक रूप में अधिक रूढ़ हुआ। एक तर्क के रूप में यह कहा जा सकता है, चूंकि दलित साहित्य गौतम बुद्ध व डॉक्टर अम्बेडकर के चिंतन से अनुप्राणित है, इसलिए उसे बौद्ध साहित्य या अम्बेडकरवादी साहित्य क्यों न कहा जाए। महाराष्ट्र में बौद्ध साहित्य पारिभाषिक शब्द गढ़ने का प्रयास और हिंदी में अम्बेडकरवादी साहित्य पारिभाषिक शब्द को स्वीकृति मिली, जिस पर अब कोई विवाद नहीं है। जैसा डॉक्टर अम्बेडकर के प्रभाव के बावजूद इन विचारों की साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए दलित साहित्य पारिभाषिक शब्द ही सटीक अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार मार्क्सवाद के प्रभाव के बावजूद साहित्य क्षेत्र में इन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रगतिवाद या क्रांतिकारी यथार्थवाद ही सटीक अभिव्यक्ति है। इसलिए जब दलित साहित्य के मार्क्सवाद के साथ संबंधों को समझना हो तो दलित साहित्य और प्रगतिवाद या दलित साहित्य और क्रांतिकारी यथार्थवाद के रूप में ही इन संबंधों को समझना समुचित है। मार्क्सवाद शब्द का प्रयोग अम्बेडकरवाद शब्द की तुलना में या संबंध में तो रखा जा सकता है, लेकिन दलित साहित्य से संबंध या तुलना में इसका प्रयोग उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहाँ भी यही उचित होगा कि हम दलित साहित्य और प्रगतिवाद शीर्षक से इस समस्या पर विचार करें। दलित साहित्य और प्रगतिवाद इन दोनों के संबंध में कई कोणों से देखा जा सकता है। पहला, दलित साहित्य की अवधारणा, प्रगतिवादी साहित्य की अवधारणा, दलित साहित्य प्रगतिवादी साहित्य तुलना, इन दोनों साहित्यिक प्रवृत्तियों को एक अन्य स्तर पर भी समझा जाना चाहिए। दलित साहित्य पर प्रगतिवादी साहित्य का प्रभाव, प्रगतिवादी साहित्य पर दलित साहित्य का प्रभाव। चूंकि दोनों ही साहित्यिक प्रवृत्तियां भारतीय साहित्य में प्रमुख स्थान रखती हैं, अतः इन दोनों प्रवृत्तियों के अंतर संबंधों पर गंभीरता से विचार उपयोगी भी हैं व जरूरी भी, ताकि दोनों ही प्रवृत्तियों से जुड़े लेखकों व पाठकों में फैली कुछ भ्रांतियों का निराकरण हो सके और दोनों ही प्रवृत्तियों से जुड़े सांस्कृतिक कार्यकर्ता अपने चिंतन में स्पष्ट हो सके। दलित साहित्य की अवधारणा, दलित साहित्य की अवधारणा दलित शब्द से जुड़ी हुई है। दलित शब्द के संकुचित से लेकर व्यापक तक अनेक व्याख्याएं हुई हैं। दलित शब्द की संकुचित व्याख्या जाति विशेष से संबंधित है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दलित माना जाता है, और जिन जातियों को भारतीय समाज के हिंदू धर्म में कुछ अन्य जातियों द्वारा अस्पृश्य माना जाता है तथा दूसरों को अस्पृश्य व निम्न जाति समझने वाली ये जातियाँ स्वयं को जाति के पद से स्वयं विभूषित करती हैं। लेकिन दलित की जातिगत परिभाषा से भी बढ़कर है इसकी व्यापक परिभाषा। समाज के वे हिस्से जिनमें उपरोक्त जातियां तो शामिल हैं ही, अन्य पीड़ित हिस्से जैसे आदिवासी, विमुक्त जातियां, स्त्रियां, गरीब किसान व मजदूर आदि शामिल हैं को भी दलित शब्द की परिभाषा में शामिल किया गया है। जिस प्रकार दलित शब्द की संकुचित व व्यापक परिभाषा मिलती है, वैसे ही दलित साहित्य की अवधारणा में भी ये दोनों ही पक्ष शामिल हैं। दलित चिंतकों का एक वर्ग दलित साहित्य को जाति से जुड़ा अर्थात सामाजिक स्तर पर उत्पीड़ित विशेषतः अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों द्वारा रचे साहित्य को दलित साहित्य के दायरे में रखता है। यही दलित चिंतक यह भी मानते हैं कि दलित साहित्य का सृजन केवल सामाजिक रूप से उत्पीड़ित व अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति के व्यक्तियों द्वारा ही संभव है। अन्य जातियों द्वारा रचित दलित साहित्य सहानुभूति का साहित्य हो सकता है, स्वानुभूति का नहीं। इसलिए सहानुभूति के साहित्य को दलित साहित्य के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका तर्क है। दलित साहित्य को व्यापक दायरे में रखकर देखने वाले दलित चिंतक जातिगत सामाजिक उत्पीड़न के साथ अन्य प्रकार के सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक, लैंगिक आदि के साहित्य में सृजन को भी दलित साहित्य के दायरे में शामिल करते हैं और ये चिंतक दलित जीवन के चित्रण के लिए दलित दृष्टि या दलित विश्व दृष्टि का ग्रहण दलित साहित्य सृजन के लिए अनिवार्य मानते हैं। ये चिंतक दलित साहित्य को विश्व के महान मानवतावादी साहित्य के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं, इसीलिए वे विश्व के ब्लैक साहित्य या संघर्ष केंद्रित अन्य यथार्थवादी साहित्य को अपनी परंपरा का अंग मानते हैं। भारतीय साहित्य में दलित साहित्य का आरंभ व विकास सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी भाषा में हुआ, वहीं पर दलित चिंतन का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वयं मराठी भाषी थे व उनके व्यक्तित्व का प्रभाव दलित चिंतन पर सर्वाधिक है। मराठी के बहुचर्चित व सम्मानित दलित लेखक बाबूराव बागुल के अनुसार दलित साहित्य मानवतावादी साहित्य ही है। इसका मूल्यबोध विश्व के क्रांतिकारी साहित्य से जुड़ा है। जो साहित्य आम आदमी को अपना नायक बनाता है और समाजवाद का पक्ष लेता है, वही दलित साहित्य का आदर्श है। प्रगतिवादी साहित्य की अवधारणा। प्रगतिवादी साहित्य चिंतन में भी दो वर्ग देखे जा सकते हैं। एक प्रकार के प्रगतिवादी चिंतक संकुचित दृष्टि रखते हैं, जो केवल वर्ग संघर्ष पर आधारित साहित्य को ही प्रगतिवादी साहित्य के दायरे में शामिल करते हैं। ये चिंतक समाज में शोषक और शोषित वर्गों, सामंत व किसान, पूंजीपति व मजदूर, इन दोनों वर्गों के बीच के संघर्ष के चित्रण में किसान व मजदूर के साथ सहानुभूति रखते हुए या उनका पक्षधर होकर रचे गए साहित्य को ही प्रगतिवादी साहित्य के दायरे में रखते हैं। प्रगतिवादी चिंतकों का एक दूसरा वर्ग भी है, जो पूरी सामाजिक संरचना को एक जटिल रूप में संकल्पित करते हैं और इस जटिल संरचना में अनेक स्तरों पर विभाजित समाज देखते हैं। वर्ग के स्तर पर, वर्ग के वर्ण के स्तर पर, जाति के स्तर पर, लिंग के स्तर पर, सामाजिक सत्ता या रुतबे के स्तर पर, अनेक स्तरों पर समाज जटिल रूप में खंडित व विभाजित है। यह खंडित और विभाजित समाज अनेक स्तरों पर संघर्षरत है। व्यापक रूप में यह सारा संघर्ष सामाजिक भेदभाव की हर स्तर पर मिलकर एक समतामूलक व हर इंसान के शान पर आधारित समाज की रचना का संघर्ष है। लेकिन इस संघर्ष के बहुविध रूप हैं। इन बहुविध रूपों में वर्ग संघर्ष भी अंतर्निहित है, लेकिन वर्ग संघर्ष का रूप कई बार इतना स्पष्ट जाहिर नहीं होता जैसे मुक्तिबोध का साहित्य। मुक्तिबोध का साहित्य गहरे स्तर पर जाकर प्रगतिवादी साहित्य की शानदार कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन इस साहित्य में सामंत व किसान या पूंजीवादी व मजदूर आमने सामने के संघर्ष में लगे दिखाई नहीं देते। वास्तव में प्रगतिवादी साहित्य की अवधारणा पर विचार करते हुए 1934 के विश्व के प्रथम प्रगतिवादी पेरिस लेखक सम्मेलन, 1936 के भारत के प्रथम लखनऊ प्रगतिवादी लेखक सम्मेलन ने गंभीर विचार विमर्श के बाद यथार्थवाद को प्रगतिवादी साहित्य का आधार माना था। गुरकी ने पेरिस में इस यथार्थवाद को समाजवादी दृष्टि से जोड़कर समाजवादी यथार्थवाद की संज्ञा दी थी, जबकि विश्व के अनेक उदार मानवतावादी लेखकों द्वारा रचे जा रहे साहित्य को आलोचनात्मक यथार्थवादी साहित्य मानते हुए अपना पूरक स्वीकार किया था। दलित साहित्य प्रगतिवादी साहित्य तुलना। दलित साहित्य और प्रगतिवादी साहित्य दोनों की अवधारणाओं से स्पष्ट है कि ये दोनों ही प्रवृत्तियां विश्व के परिवर्तनकामी मानवतावादी क्रांतिकारी साहित्य का अभिन्न अंग है। इन दोनों प्रवृत्तियों में अंतर भारतीय समाज की विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में है। भारतीय समाज में वर्ग विभाजन व वर्ग शोषण के साथ साथ सदियों से चला आ रहा जातिगत सामाजिक उत्पीड़न भी विद्यमान है, जिसकी ओर प्रगतिवादी साहित्य ने अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया व यही समझा कि वर्ग विशेष व वर्ग विभाजन की समाप्ति के साथ ही जातिगत उत्पीड़न अपने आप समाप्त हो जाएगा। यदि वर्ग संघर्ष इतना तीव्र होता कि रूस और चीन की तरह अपेक्षाकृत कम समय में सफल हो सकता, तो इस बात की सत्यता की जांच हो सकती थी कि वर्ग विभाजन की समाप्ति के साथ ही जातिगत सामाजिक उत्पीड़न समाप्त हुआ या नहीं। लेकिन भारतीय समाज में वर्ग संघर्ष कभी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच पाया कि वह जातिगत उत्पीड़न को समाप्त कर पाता। ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अम्बेडकर व पेरियार आदि महापुरुषों ने जातिगत स्तर पर उत्पीड़ित वर्गों में जो सामाजिक चेतना जागृत की, उससे जातिगत सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ जन आंदोलन विकसित हुए। उनमें केवल वर्ग संघर्ष में आस्था रखने वाले राजनीतिक नेतृत्व ने न ठीक से समझा, न उसे व्यापक जन संघर्षों में समाहित करने के प्रयास किए। परिणामतः वर्ग संघर्ष की शोषित शक्तियाँ विभाजित हुई व साहित्य में भी प्रगतिवादी आंदोलन कमजोर हुआ व इसके समकक्ष दलित साहित्य का सशक्त जागरण हुआ। स्पष्ट है कि प्रगतिवादी साहित्य व दलित साहित्य का आधार समान है। यह आधार है यथार्थवाद। दोनों ही प्रवृत्तियों से जुड़े कटु सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं में करते हैं। दोनों ही प्रकार के लेखक मनुष्य को, उसके जीवन के दुखों सुखों और संघर्षों को अपनी रचना के केंद्र में रखते हैं। दोनों ही प्रकार के लेखक अपनी रचना में रचना के बाह्य रूप से अधिक अंतर्वस्तु पर बल देते हैं। जाहिर है कि दोनों प्रकार की रचनाओं का सौंदर्य शास्त्र भी एक जैसा ही होगा। अंतर केवल यथार्थ चित्रण के विशेष पक्ष में है, जहाँ दलित दृष्टि संपन्न लेखक जातिगत आधार पर उत्पीड़ित अपमानित मानवता के दुख आक्रोश और विद्रोह पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, वहाँ प्रगतिशील दृष्टि संपन्न लेखक वर्ग आधारित संघर्ष की ओर अधिक ध्यान देता है। अपनी अंतर्वस्तु में यथार्थ के ये दोनों ही रूप एक दूसरे के पूरक है, न कि विरोधी। अतः दलित लेखकों व प्रगतिशील लेखकों की परस्पर छींटाकशी के बावजूद दोनों ही प्रवृत्तियों के लेखक एक ही मंजिल, शोषण मुक्त समता मूलक समाज के निर्माण की मंजिल के हम सफर हैं। इस बात को हिंदी के प्रसिद्ध दलित चिंतक लेखक माता प्रसाद ने सर्वाधिक स्पष्टता से पहचाना है। इसीलिए अपने महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा में उन्होंने प्रगतिवाद को सर्वाधिक निकट मानते हुए प्रगतिवादी धारा के अनेक कवियों की रचनाओं को दलित काव्य धारा में सम्मानजनक स्थान दिया है, जो कि उचित और तर्कसंगत है। दलित साहित्य पर प्रगतिवादी साहित्य का प्रभाव। दलित साहित्य का आरंभ मराठी में सबसे पहले हुआ और मराठी के जिन लेखकों ने सबसे पहले दलित साहित्य को प्रतिष्ठा दिलाई वे स्वयं प्रगतिवादी साहित्य से जुड़े थे। वह आज भी वे प्रगतिवाद के विरोधी नहीं हैं। अन्ना भाव साठे और नारायण सुर्वे ने 6वें व 7वें दशक में दलित स्वरों को सशक्त अभिव्यक्ति दी। दोनों ही प्रगतिवाद से प्रभावित थे। नारायण सुर्वे आज भी दलित साहित्य व प्रगतिवाद दोनों से स्वयं को जुड़ा महसूस करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के भाई व मराठी के लब्ध प्रतिष्ठित लेखक शरत चंद्र मुक्तिबोध प्रगतिवाद से जुड़े लेखक थे, लेकिन उन्होंने दलित साहित्य का स्वागत किया व इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया। इसी प्रकार 1972 में अर्जुन डांगले, नामदेव ढसाल व जे बी पवार आदि युवा मराठी लेखकों द्वारा स्थापित दलित पैंथर पर ब्लैक पैंथर आंदोलन का प्रभाव तो था ही, नक्सलवाद का प्रभाव भी उन पर था, जो समय का विद्रोही आंदोलन था व जिसकी जड़ें प्रगतिवाद में ही थी। हिंदी भाषा में जिन लेखकों ने दलित जीवन को आधार बनाकर महत्वपूर्ण रचनाएं की, दलित साहित्य आराम से होने वाली लिखी पहले लिखी उनमें प्रेमचंद, सदगति, ठाकुर का कुआं, गोदान, कर्मभूमि आदि अनेक रचनाएं, निराला का बिल्लेसुर, बकरिया, कुल्ली भाट, चतुरी चमार, भिक्षुक व तोड़ती पत्थर इत्यादि, अमृतलाल नागर, नाच्यो बहुत गोपाल, नागार्जुन बलचन्मा, हरजन गाथा आदि, जगदीश चंद्र, धरती धन्न अपना, नरक कुंड में वास आदि, चतुर्थयन शास्त्री गोली, वयम रक्षामा आदि शामिल हैं। इन लेखकों में अधिकांश प्रगतिवाद से प्रभावित रहे हैं, लेकिन हिंदी में दलित साहित्य के प्रवृत्ति रूप में आरंभ होने के बाद दलित चिंतकों और प्रगतिवादी चिंतकों में कटु विवाद छिड़ा है। यद्यपि इस विवाद का सैद्धांतिक आधार कमजोर है, लेकिन दोनों पक्ष व्यवहारिक उदाहरण लेकर एक दूसरे पर छींटाकशी जरूर कर रहे हैं, जो स्वस्थ विमर्श के लिए उचित नहीं है। पंजाबी में भी दलित जीवन पर सुजान सिंह, संतोख सिंह, धीर, गुरदयाल सिंह आदि प्रगतिवाद से प्रभावित लेखकों ने भी ध्यान केंद्रित किया है। आज के दलित लेखक लाल सिंह दिल, अतरजीत, प्रेम गोरखी, किरण पाल कजाक आदि भी अपने दलित लेखन पर प्रगतिवाद का प्रभाव स्वीकार करते हुए दोनों प्रवृत्तियों में कोई अंतर विरोध नहीं देखते। अन्य भाषाओं में भी कमोबेश यही स्थिति है। कुल मिलाकर दलित साहित्य के एक प्रवृत्ति रूप में विकसित होने में प्रगतिवाद का योगदान सकारात्मक है। प्रगतिवादी साहित्य पर दलित साहित्य का प्रभाव। कुछ प्रगतिवादी चिंतकों को यह बात नागवार लग सकती है कि प्रगतिवादी साहित्य पर दलित साहित्य के प्रभाव की चर्चा की जाए, लेकिन वास्तविकता से आंख नहीं मूंदी जा सकती। पिछले 2 दशकों में भारतीय साहित्य में दलित साहित्य सृजन की प्रवृत्ति ने सशक्त आधार ग्रहण किया है और मराठी के अतिरिक्त दलित साहित्य की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति बनकर स्थापित हुई है। अन्य भाषाओं गुजराती, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, तमिल आदि में भी इस प्रवृत्ति को सम्माननीय स्थान प्राप्त हो रहा है। इन भाषाओं में प्रगतिवाद से जुड़े कुछ लेखक व चिंतक दलित साहित्य की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं व इस पर गंभीर विमर्श करने को भी प्रस्तुत हुए हैं, जिनमें हंस संपादक और प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, महीप सिंह, प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर मनेजर पांडे आदि शामिल हैं। मराठी भाषा के अधिकांश प्रगतिवादी लेखक व चिंतक दलित साहित्य चिंतन को प्रगतिवादी चिंतन में समाहित करने की ओर अग्रसर है। रमणिका गुप्ता, जबरीमल पारिक आदि जनवादी लेखक दलित धारा को प्रगतिशील दृष्टि से विश्लेषित करने में अग्रसर हैं। इसलिए यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि दलित साहित्य चिंतन ने प्रगतिवादी साहित्य चिंतन और लेखन दोनों को प्रभावित किया है। मराठी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़ आदि के प्रबुद्ध प्रगतिवादी लेखक व चिंतक दलित साहित्य की प्रवृत्ति का खुले मन से स्वागत करते हुए प्रगतिवादी साहित्य पर इसके प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं, जिससे इन भाषाओं का प्रगतिवादी साहित्य भी जातिगत आधार पर दलित सामाजिक उत्पीड़न के प्रति अधिक संवेदनशील हुआ है और इससे उसकी रचनात्मक ऊर्जा भी बढ़ी है। कुल मिलाकर न केवल दलित साहित्य पर ही प्रगतिवाद का प्रभाव पड़ा है, वरन प्रगतिवादी साहित्य पर भी, जब दलित साहित्य के प्रभाव को स्पष्ट परिलक्षित किया जा सकता है। निष्कर्ष: दलित साहित्य और प्रगतिवादी साहित्य के अंतर संबंधों पर दोनों स्तरों पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि दोनों साहित्यिक प्रवृत्तियों के उद्गम और विकास का स्रोत भी समान है और उनकी रचना का आधार भी समान है। दोनों प्रवृत्तियों का उद्गम का स्रोत है भारतीय समाज का वर्ग, जाति, वर्ण, लिंगगत विभाजन व शोषण। दोनों प्रवृत्तियों का सौंदर्य शास्त्र भी एक जैसा ही हो। सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के क्रम में यह भी स्पष्ट है कि दोनों ही साहित्यिक प्रवृत्तियों ने समय समय पर एक दूसरे को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, यद्यपि दोनों प्रवृत्तियों में विवाद के बिंदु मौजूद हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज व भारतीय साहित्य के संदर्भ में प्रगतिवादी साहित्य व दलित साहित्य दोनों ही प्रवृत्तियाँ समाज की ऐतिहासिक अनिवार्यता से पैदा हुई। दोनों का अंतर संबंध एक दूसरे का विरोधी न होकर पूरक होने का है और दोनों की प्रवृत्तियाँ विश्व की महान परिवर्तनकामी मानवतावादी क्रांतिकारी साहित्य परंपरा का गौरवशाली अंग है, जो भारतीय समाज के रूढ़िवादी संस्कारों को बदलने व नई मूल्य चेतना विकसित करने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा रही हैं।